السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. سورة الفجر، یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کا نام بھی اس کی پہلی آیت میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، جب وہ لمبی لمبی جا کے صورتیں اپنے قبیلے میں جا کے پڑھا رہے تھے اور کسی نے شکایت کر دی کہ یہ ہمیں اتنی لمبی صورتیں پڑھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم یہ سورہ آلہ اور سورہ دحا اور سورہ فجر یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھاتے؟ یعنی ان صورتوں کو آپ اپنی عشاء میں پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، قسم ہے فجر کی، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک مراد تو مفسرین نے اس سے یہ لی ہے کہ صبح کا وقت، صبح صادق کا وقت، جب رات ختم ہو جاتی ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے، وہ وقت. دوسرا قول یہ ہے کہ الفجر سے مراد نماز فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، کیونکہ اس وقت فرشتے جمع ہوتے ہیں، جو دن اور رات کے فرشتے ہیں. اور تیسری بات یہ بھی لی گئی کہ دن کی قسم ہے، اصل میں فجر سے دن شروع ہوتا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ ایک مراد دی گئی ذی الحج کے پہلے 10 دن، دوسری مراد رمضان کی آخری 10 راتیں، اور تیسری محرم کے پہلے 10 دن. مگر زیادہ راجے، زیادہ جمہور کا یہ قول ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، اور دوسرا جو سٹرونگ اوپینین ہے اس کے بارے میں، وہ رمضان کی 10 آخری راتیں. ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قسم اس جس چیز کی کھائی جاتی ہے وہ بھی اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی، شفع ایون کو کہتے ہیں، والوتر، اور جیسے ہم وتر پڑھتے ہیں تو آڈ کو کہتے ہیں، جفت اور طاق کی. شف کس سے ہے؟ شفاعت، جیسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش کے لیے اپنے ساتھ کسی کو لے کر آتا ہے، تو وہ ایک نہیں رہا، آپ دو بن گئے، تو ایون ہو گیا نا، اس سے آپ یاد رکھیں. اور وتر اور وتر ایک ہی بات ہے. طاق کی، واللیلی، اور رات کی. اذا، جب، یسر، وہ رخصت ہو رہی ہوگی یا چلنے لگ رہی ہے، چل رہی ہے، جب رات جا رہی ہے. اور بعض نے اس کا معنی یہی لیا کہ مغرب سے فجر تک کا وقت، اس میں رات گزر رہی ہوتی. هل في ذلك قسم لذي حجر، کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ یعنی یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، کیا اس میں عقل والوں کے لیے کوئی بات ہے سمجھنے کی؟ اتنی عظیم چیزیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی، تو کیا کچھ بات ہے جو سمجھ آتی ہے اس سے؟ جواب قسم یہاں پہ نہیں ہے کہ کس چیز پہ قسم کھائی گئی، اور یہ صرف کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، یہ زندگی گزر رہی ہے اور جلد ہی وہ اس انجام تک پہنچ جائے گا جہاں پہ اس سے سوال جواب شروع ہوگا. تو 5 قسمیں کھا کے یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی بات کو بغیر قسموں کے ہی یقین کرتے ہیں، مگر قسم اس لیے کھائی گئی تاکہ تاکید آ جائے اور زور پیدا ہو جائے. ये तुम अल्लाह ताला के हुक्मों को मामूली ना समझो, उनको इस तरह इजी ना लो। जो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिए हैं उसके मुताबिक अगर तुम्हारा अमल नहीं होगा तुम्हें जवाब देना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। और ये सब निशानियां हैं जो कि वाजे कर रही हैं इस चीज को, एक रब है जो ये कायनात को चला रहा है और कैसे हर चीज अपने अंजाम को पहुंचती है। एक फजर है वो भी खत्म हो जाती है, फिर रात है, फिर रात का चलना होता है, फिर रात भी मुकम्मल हो जाती है। और शफा और वतर से क्या मुराद है? इससे तो सब चीजें ही मुराद है, मुफस्सिरीन ने ली है। शफ से मुराद एक एक मुराद लिया है यौम नहर, 10 ज़िलहज जो होती है, और वितर से मुराद यौम अरफा। दूसरा शफ से मुराद मखलूक ली है, मखलूक, क्योंकि सारी मखलूक जोड़ों की सूरत में, और वितर से मुराद अल्लाह ताला की जात है, और हदीस में है ना अल्लाह ताला वितर है। और फिर शफ और वतर से मुराद फर्ज नमाजों में ऑड और इवन नंबर रकात में होना, ये भी मुराद दिया गया है। तो ये सबसे तीन कवि इसके अंदर चीजें हैं जो मुराद ली गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अकवाल है कि इससे ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको जनरली ऐसे ही छोड़ दिया, कोई भी बात बयान नहीं की, तो हम भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ये सारी मुरादें हो सकती हैं। तो इसमें अकल वालों के लिए सोचने का मकाम है, कोई इसके अंदर फायदा है। हम अपने आप को बड़ा अकल वाला तो समझते हैं, ये कभी इन चीजों में गौर करके अपने रब को पहचानने की भी कोशिश की है, इन कस्मों में गौर किया है, बहुत कुछ है अकल वालों के लिए। क्या यानी ये पूछा जा रहा है कि काफी सबक नहीं है इसमें, क्या काफी बातें समझ नहीं आ जाती? हिजर असल में पत्थर को कहते हैं या चट्टान को, तो ये जो चट्टान होती है ना वो भी इंसान को रोक देती है, रुकावट पैदा कर देती है अगर जा रहा हो तो। इसी तरह जो अकल भी है वो इंसान को बुराई से रोकती है, गलत कामों से रोकती है, नुकसान से रोकती है। तो दी वाले हिजर अकल। अब जैसे पीछे हमें दिखाया गया कायनात में निशानियां दिखाई गई, कहीं आसमान को देखो, कहीं जमीन को देखो, कहीं ऊंट को देखो, कहीं पहाड़ों को देखो, इसी तरह यहां पर आप पिछली कौमों की किस्से और उनकी हलाकत की बात से हमें कहा गया हम गौर व फिक्र करें। जब अलम तरह आता है तो उसका मतलब सिर्फ देखना नहीं होता कि आपने ऊंट को देख लिया, आपने आसमान को देख लिया, बस देख लिया ना, मतलब होता है गौर व फिक्र करो। अलम तरह कैफा, क्या तुमने देखा नहीं किस तरह? फाला किया रब्बू का तेरे रब ने भी आद आद के साथ। हम आद की कहानी पहले पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल शुरू की कौमों में से थी एक कौम, अल्लाह ताला ने उनके अंजाम पे गौर करने की दावत दी है। वो कैसे थे? इरम, जो इरम थे, इरम इसके बारे में आता है कि या तो ये मुराद है इरम, कतादा कहते हैं पिछली कौम उसके लिए इरम का वर्ड आया, या फिर आद की ही एक बस्ती थी जिसका नाम इरम था, या फिर ये एक आद के जद्दे अमजद थे, उनके फोर फादर्स में से एक था इरम जिसका यहाँ पे जिक्र है, या फिर कदीम के मानों में है कि बहुत पुराना। तो ये सब मुरादें ली हैं उलमा ने। इरम जो इरम के थे, दातिल इमाद, इमाद वाले, अमद से इमाद यानी सतूनों वाले थे। सतूनों वाले से मुराद क्या है? यानी या तो फिजिकली ये लोग इतने स्ट्रोंग थे कि जैसे सतून होते हैं, या ये सतून बनाया करते थे, पिलर्स बनाया करते थे, लंबी लंबी पिलर्स बना के मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, ऐसी शानदार इमारतें बनाते थे जो किसी काम की नहीं होती थी, सिर्फ मॉन्यूमेंट, यादगारें जिसको कहते, मीनारे बना बना के रखे हुए थे अपनी शानो शौकत जाहिर करने के लिए, वो इस तरह से बनाते थे।
उनके बारे में एक और बात पता चलती है, अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, वो जो ना पैदा किए गए मिसलुहा उन जैसे, फिल बिलाद मुल्कों में, कहीं पे उन जैसी कौम नहीं थी, वैसा किसी को पैदा नहीं किया गया। यानी इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बड़े डील डोल वाले अल्लाह ताला ने उनकी ताकत का यहाँ पे बताया। वो खुद कहते थे वकालू मन अशद्दु मिनकुम कुव्वा, कौन है मे हमसे ज्यादा शदीद कुव्वत में, हमसे ज्यादा तो शदीद कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा तो सख्त कोई है ही नहीं। लेकिन फिर उनका अंजाम क्या हुआ? एक रीहन सरसरन थी, एक हवा थी जो चलने लगी, तो सबा लयाले व समानिया था, अय्याम चलती रही, 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल, और इनका काम तमाम कर दिया। हत्ता के फहल तरा लहुम मिन बाकिया, अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम्हें कोई उनके बाकी कभी नजर आया, कि कोई कौमे आज से आज तक चला आ रहा हो? खत्म हो गए सब के सब। तो इनका दुनिया में जीना बड़ी शानो शौकत के साथ, बड़ी तरक्की और उसके साथ, और फिर इनका लोगों में फख्र करना कि हम बड़ी चीजें, ऐसी तामीरात बनाना कि जो लोगों को बड़ी इंस्पायर करती हूँ, और अपनी ताकत के नशे में रहते थे और अपने आप को बड़ी चीज कहते थे। फिर देख लो कि इनका अंजाम क्या हुआ। बताया जा रहा है कि तुम कहीं किसी नशे में ना रहना अपने ताकत के, कि हाँ भाई उनके साथ हुआ था, हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता। समूद अल्लदीना जाबू सखरा बिलवाद, और समूद जिन्होंने तराशा था, जाबू तराशा जिन्होंने असखर चट्टानों को, बिलवाद वादी में, यानी वादी में पानी जमा होता है, तो इतने स्किल्ड थे पानी के लिए, उन्होंने ऐसी जमा करने की चीजें बना रखी थी, और चट्टानों को तराशते थे खुद अपने हाथों से। वो कितने ह्यूज होंगे या कितनी उनके अंदर ताकत होगी जो चट्टानों को तराश सके, आज भी मशीनों के जरिए तो करते हैं, खुद तो नहीं कर सकते, ये कोई हाथों में कोई टूल्स पकड़ के तो करने लगे। आज भी मदायने साले मौजूद है सऊदी अरब में, और कोई जाके देखना चाहे तो देख सकता है, मगर इसको एक पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए, इबरत की जगह है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगहों से जल्दी गुजरने का हुक्म दिया, ये वहां पे ठहरे नहीं जहां पे लोगों के ऊपर अजाब आया हुआ, या क्योंकि ये ना हो आपके ऊपर आ जाए। तो इन्होंने भी आलीशान इमारतें बनाई, और आज वो उनके दरवाजे वगैरह तो नहीं है, खिड़कियां तो नहीं है, लेकिन पहाड़ों को तराश तराश के जैसे इमारतें बनाई नहीं है, वो वैसे के वैसे ही खड़ी हुई है, लेकिन वहां पे ना बंदा को ना बंदे की जात कोई भी नहीं है, वो दोबारा बसी ही नहीं। चलो आज तो हम सोचते हैं हमने इसे बेहतर कर लिया, लेकिन जब ये तबाह हुए उसके बाद ही कोई इनको आबाद कर लेता, आज तक हजारों सालों में वो अपनी वीरानी की तस्वीर है, वहां पे कोई आबाद नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। वह फिरउन दिल औताद, और फिरउन वतद वाला, वतद की जमा औताद है, वतद मेखों को भी कहते हैं, औताद को, यानी मेखें, लश्कर और रस्सियां। मेखें इसलिए, ये फिरौन के इतने लश्कर थे, जहां जाते थे मेखें गाड़ के अपने टेंट्स लगा लेते थे, तो मेखों वाला। और दूसरे इसके लश्कर इतने बड़े थे, जाहिर है जहां पे भी जाता था लश्कर पूरी जगह वो वहां पे अपना पड़ाव करते थे, और रस्सियां भी कि जिनसे बांध के ये लोगों को टॉर्चर करता था, उनके हाथ पैर काट देता था और फिर उनको वहीं पे लटके रहने देता था। तो फिरआउन ये भी बड़ा ताकतवर था, ना रब्बुकुम अला कहता था। अल्लदीना तगौ फिल बिलाद, अल्लदीना प्लूरल का सीगा होता है, इन सब ने, यानी कौन कौन, आद समूद फिरआउन, तगऊ सरकशी की, तुगयानी की, फिल बिलाद जमीन में मुल्कों में, तो तो यानी क्या होती है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लेना, बाउंड्रीज एक्सीड करना। तो इन्होंने जमीन में फसाद किया, इन्होंने जमीन में जुल्म किया। ये इनके बारे में आता है आद के बारे में कि जब पकड़ते थे तो बड़ी सख्त पकड़ पकड़ते थे। और फिरौन के जुल्म का तो आपने पढ़ा ही है कि वो कितना जुल्म करता था, जिसको एक बच्चों के ऊपर भी तरस ना आए वो कैसा होगा। तो इन्होंने बहुत सरकशी की, बहुत जुल्म किया, इन्होंने अल्लाह के कवानीन को तोड़ा, इन्होंने फसाद मचाया, इन्होंने इंसानों के हकूक भी सल्ब किए और अल्लाह ताला का हक भी नहीं दिया। तो अक्सरु फी हल फसाद पर कसरत से किया, अक्सरु कसरत से किया, फीहा इसमें इनमें अल फसाद बिगाड़, बहुत ज्यादा बिगाड़ करने वाले थे। और जब भी कोई बिगाड़ करता है तो उसका अंजाम क्या होता है, उसका अंजाम यही होता है कि अल्लाह ताला उसे नेमते छीन लेता है। इंसान ना डर होके दुनिया में जिंदगी गुजारता है, लेकिन वो समझता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला दुनिया में भी वो नेमते जो उसने उनको दी होती हैं वो वापस ले लेता है। जब वो फसाद में बढ़ गए, अल्लाह ताला ने भी उनसे नेमते वापस ले ली। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्तियों वाले ईमान लाके तकवा इख्तियार करें, हम बरकतों के दरवाजे इनके ऊपर खोल दें, आसमान से भी और जमीन से भी। तो इंसान को ये समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला का एक मंसूबा है, उस मंसूबे के मुताबिक, उस प्लानिंग के मुताबिक वो दुनिया को चला रहा है। अब इस दुनिया में बाज लोग अल्लाह ताला के फरमा बरदार हैं और बाज लोग दुनिया में फसाद मचाने वाले, और वो ये समझते नहीं है कि अल्लाह ताला अनकरीब उनको पकड़ेगा और ऐसी सजा देगा जिससे फिर वो बच नहीं सकेंगे। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी, हर रोज सूरज रोशन करता है कि बंदे दिन चढ़े अपने काम करें, हर रोज रात लेकर आता है कि बंदे आराम करें, जमीन से रिस्क उगाता है, आसमान को छत बनाता है इंसान के लिए कि इंसान अपना सामान्य जिंदगी यहाँ पे चला सके, और इंसान को बहुत सारे मौके भी देता है। लेकिन इंसान अगर फसाद करता जाए और कसरत से बढ़ जाए फसाद करने में, तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला की तरफ से फिर ऐसा अजाब आता है, फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अजाब। तो डाला उंडेला, सब कहते हैं उंडेलने को, पोर करने, जैसे बाल्टी किसी के ऊपर पानी की भर के डाल दी जाए, अलैहिम उन पर रब्बू का तेरे रब ने सऊत कोड़ा आदाब का, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर फिर बरसाया, उंडेलना बरसाना, बरसाया उनके ऊपर अजाब का कोड़ा, यानी ऐसा अजाब फिर उनके ऊपर आया कि वो संभल ना सके, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जिन लोगों को दुनिया में माल और दौलत और ये सब मिल जाता है, वो ये समझने लगते हैं कि बस अब तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, अब हम जो मर्जी करें, वो करप्शन करते हैं, वो लोगों के ऊपर जुल्म सितम ढाते हैं, और वो समझते हैं हम आज़ाद हैं, और अब इसी तरह हमें छुट्टी मिली रहेगी। लेकिन जब अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा बरसता है, तो फिर वो इतना सख्त अजाब होता है, वो कोड़ा, कोड़ा क्यों कहा गया, इसलिए कि सजा के लिए कोड़े ही होते। तो इंसान कभी भी जुल्म ना करे, कभी भी फसाद ना मचाए अल्लाह की जमीन के ऊपर। अल्लाह ताला ने इस शरीयत को भेजा ही इसलिए कि इस जमीन के ऊपर फसाद ना हो। अगर इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पे चलता है तो वो फसाद से बच सकता है, लेकिन इंसान जब अल्लाह के अहकामात को तोड़ता है तो जमीन पे फसाद मच जाता है, जुल्मो सितम होने लगता है, हकूक सल्ब किए जाते। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब अलबत्ता घात में है। अल्लाह ताला का घात में होना, घात में एक होता है सिर्फ देखना और एक होता है घात में होना, यानी वो वॉच कर रहा है, वो देख रहा है। और घात लगाने की जगह ऐसी होती है जहां पर शिकारी इंतजार करता है एक वक्त का, जब उसने शिकार को पकड़ना, और वो छुप के बैठा होता है, और शिकार फिर बच नहीं सकता। शिकार को पता ही नहीं होता कि ये यहां पे कोई शिकारी बैठा हुआ। तो अल्लाह ताला भी इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, ल अलबत्ता यानी यकीनन, बिल मिरसौद, घात में है। यानी अल्लाह ताला वहां से देख रहा है, तुम्हें नहीं ये इल्म। अल्लाह ताला के इल्म का जरिया क्या है? वो खुद तुम्हारे अमाल को देख रहा है। और इंसान गाफिल रहता है, लेकिन वो घात में लगा हुआ है। उसने एक वक्त मुकर्र किया किस वक्त पकड़ना, तब उसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकेगा। और घात लगाने का मतलब ये भी है कि बातें सुन रहा है और आमाल देख रहा है और सरगोशियों को सुनता है। ये इब्ने अब्बास ने तफसीर की है, और उनके छुपे आमाल को भी देखता है। तो अल्लाह ताला तो घात में लगा हुआ, यानी वो इंसान को पकड़ने के लिए वो वॉच कर रहा है, वो इंतजार में है पहले से ही। पहले आया था इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, रब आया है कि तेरा रब लबिल मिरसाद। इसका मतलब अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ लेता। अब देखे ना, जो घात में बैठा होता ना, वो इंतजार करता है, अल्लाह ताला भी फौरी नहीं पकड़ता। उसको पता है कि कब किसको कितना टाइम देना है। अब आगे इंसान की दो गलत फहमियों को दूर कर दिया गया। जैसे ये इन लोगों को बहुत कुछ मिला और फिर वो जुल्म करने लगे और फसाद इन्होंने किया, तो एक इंसान की सोच में भी एक बिगाड़ है जिसकी तस्हीह यहाँ पे कर दी गई। फअम्मल इंसान, तो रहा इंसान, इदा मबतलाहु रब्बुहु, जब उसका रब उसको आजमाइश में डालता है। इब्तिला क्या होती है? आजमाइश, सख्त इम्तिहान। उसका रब भी डालता है, फअक्रमहु, फिर इज्जत देता है उसको, और नअमहु, और नेमत देता है उसको। समझ आई कि उसको टेस्ट कैसे करता है? इज्जत दे के और नेमतें दे के। फयकूलू, तो कहता है वो बंदा, रब्बी रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दे दी, इकराम दिया है, मेरे रब ने मेरे बड़ा करम किया हुआ मेरे ऊपर। अब अगली भी आयत पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। वह अम्मा, और अब ऑपोजिट है, और अगर फिर, इदा जब, मबतला हो, वो आजमाता है हु उसको, फकादारा, तो तंग कर देता है, अलैहि ही इस पर, रिस्का हो उसका रिस्क। तंग करने का माना कहाँ से है? कदर से। तंग करने का भी, अंदाजा करने का भी माना होता है। फयकूलू, तो वो कहता है, रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझे जलील कर दी, मेरी अहानत कर दी, मुझे रुसवा कर दी। ये इंसान के दो रवैये हैं। इंसान को जब नियमतें मिलती हैं तो वो फूले नहीं समाता और कहता है मेरे पर मेरे रब का बड़ा करम है जी, यानी ऐसे जैसे कि वो इसको डिजर्व करता था, जैसे कि वो इसके लायक ही था, वो इस काबिल ही था कि मुझे जो दिया है, तो यानी मैं कुछ हूं ही, तो मुझे दिया है ना, मुझे तो बड़ा कुछ दे दिया है, यानी आप इसको इसको इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है, आसाइशें मिली हुई हैं, फरावानी हर चीज की है। तो कह तो रहा है मेरे रब ने, तौहीद तो है, मगर एक बिगाड़ है, एक गुमराही का एलिमेंट उसके अंदर है। कैसे? कि वो ये समझता है कि ये जो मिला हुआ है ना, ये तो यानी मेरी कोई काबिलियत ही होगी जो अल्लाह ने मुझे दे दिया, मेरे रब ने मेरे ऊपर बड़ा इकराम किया हुआ जी, बड़ा फजल है रब का। तो बड़ी उसको ये भी लगता है कि माल का मिल जाना बहुत बड़ी काबिले फखर बात है, बड़ी बहुत मेरे लिए ऊंची बात है। यानी आप वो ब्रैग कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जो है ना, मुझे ये मिला हुआ है, मेरे रब ने मुझे ये दिया हुआ है, तो उसको लग रहा है कि बस मैं तो कामयाब ही कामयाब हूं, मैं मुझे तो बस बहुत मैं अच्छा हूं कि मुझे ये सब मिला। दूसरी तरफ अम्मा ही मबतला हूं, और जब फिर वो आजमाता है उसको, फिर से आजमाइश की सेम वर्ड आया, फकादर आले ही रिस्का हु, फिर तंग किया उस पर इसका रिस्क, तो तू आगे से वो कहता है, मेरे रब ने तो मुझे रुसवा कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस बंदे ने पहली जब नेमत मिली उसको भी इम्तिहान नहीं समझा, और उसको ये समझा कि मेरे रब ने मेरे ऊपर ये कर्म किया, हाँ तो मैं इस लायक तो था ही ना, देखो मुझे मिला है आखिर, ठीक है। और दूसरी तरफ जब उसको कोई यानी ऐसी माली परेशानी आई या कोई बीमारी आई या कोई कोई उसके ऊपर ऐसी आजमाइश कोई इम्तिहान आ गया जिंदगी के अंदर जिसमें उसके लिए तंगी हुई, कोई गम आ गया, कोई ऐसी परेशानी टूट पड़ी, मुसीबत आ गई, तो कहता है मेरे रब ने तो मेरे साथ देखो क्या किया, मुझे तो रुसवा करके रख दिया, मुझे तो जलील करके रख, यानी इसमें शिकवा है, इसके अंदर शिकायत है। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है वनबलूकुम बिशर बिशर्री वल खैरी फितना, हमने तो खैर और शर दोनों से आजमाइश की तुम्हारा, हम आजमाएंगे तुम्हें। अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ये बंदा कितने पानी में है, ये बंदा इसको क्या समझता है। जब इसको दिया जाता है तब कितना अल्लाह ताला को याद करता है, जब लिया जाता है तब क्या करता है। और अगर इंसान नेमते पाके बस खुश होता जा रहा है, इतरा रहा है, और ये समझता नहीं है कि ये मेरा इम्तिहान है, तो देखिए यही यहां पे बताया गया कि वो उसको इम्तिहान नहीं लग रहा, वो बड़ा फूल रहा है और कह रहा है बस मेरे रब का फजल है। ये नहीं कि आप शुक्र ना अदा करें, बिल्कुल शुक्र अदा करें, अगर उस चीज के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये नहीं कि देखो मुझे ये मिल गया, मेरे रब ने मुझे दिया ना। और दूसरी तरफ कोई शर पहुंच जाए, जॉब ही चली गई, ये नुकसान हो गया कारोबार में, या और कोई ऐसे जिंदगी के अंदर परेशानी आ गई, तो फिर फौरन मायूस होने लगता है, कहते बस मैं कुछ नहीं रह गया, मैं तो बस खत्म, मेरे रब ने तो मुझे जलील करके रख दिया, बोला मैंने ऐसा किया किया था, वो इसको भी इम्तिहान नहीं समझता। हालांकि अल्लाह ताला आजमाइश में डालता रहता है लोगों को ताकि खरा और खोटा अलग अलग हो जाए। अगर हम इस बात को ये इम्तिहान नहीं समझेंगे ना, तो होगा ये कि जब खुशी का वक्त आएगा तो हम आपे से बाहर होंगे, खुशी के वक्त में तकब्बुर भी करेंगे और हम अल्लाह की हदों को भी तोड़ेंगे और बाउंड्रीज क्रॉस करके फिर देख लेते हैं ना आपके खुशी के वक्त में लोग क्या क्या करते हैं। जी हमारा तो खुशी का वक्त है, हम तो सब चीज यानी जायज है अब। और जब उसके ऊपर कोई परेशानी आएगी, वो अगर इसको इम्तिहान नहीं समझता ना, तो फिर वो मायूसी के अंधेरों में चला जाता है, डिप्रेशन और फिर खुदकुशियां और पता नहीं क्या क्या। हालांकि मोमिन वो है जो ये समझता है कि अगर अल्लाह ने दिया है ना, ये भी इम्तिहान है मेरा, और लिया है तो ये भी इम्तिहान है। अगर अल्लाह ताला कोई दुनिया के अंदर आसाइश देता है, माल देता है, तो माल का मतलब ये नहीं कि अब हम इतने आपे से बाहर हों कि हम पार्टियां थ्रो कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या क्या नहीं चीजें कर रहे हैं और माल को जाया भी कर रहे हैं और लोगों के ऊपर बातें भी कस रहे हैं और देखो मुझे मिला है ना आखिर कोई, यानी मेरे अंदर कोई गुरु होंगे ही तो मुझे मिला है, तुम्हें नहीं मिला तो अपने आप को बड़ी चीज भी समझ रहे हैं। करे इंसान इसको इम्तिहान ही नहीं समझ रहा और अपने ऊपर मुश्किल को भी इम्तिहान नहीं समझ रहा, तो वो कैसे इसमें सही रिएक्ट करेगा। जिस वक्त इंसान ये जान लेता ना ये मेरे इम्तिहान है, तभी उसको समझ आती है कि नहीं, जब कोई चीज मिली है शुक्र, जब कोई चीज छीनी है सबर, क्योंकि ये दोनों में अल्लाह ताला मुझे जांच रहा है, मुझे टेस्ट कर रहा है कि मैं खरी हूं कि खोटी हूं, मेरे ईमान के दावे कैसे हैं, मेरे अंदर ईमान है भी कि नहीं है। अल्लाह ताला आजमाता है इंसान को, इंसान इस चीज को भूल जाता है, और जब खुशी के दिन है तो फिर तो ठीक है, थोड़ा बहुत अल्लाह तौबा भी नहीं याद रहता और नमाजें भी जा रही हैं, जब गम के दिन आते हैं तो फिर अल्लाह तो बार वजीफे याद आ जाते हैं, और फिर इंसान कहता है अब मैं अल्लाह की तरफ आता हूँ। और यानी इंसान इम्तिहान के पर्चे समझ ही नहीं पाता, दोनों को इम्तिहान नहीं जानता। हम किस वक्त कहते हैं इसके ऊपर आजमाइश है, जब कोई मुसीबत में होता है, जब कोई परेशानी आती, तो हम कहते हैं इम्तिहान है उसका। हम भी तो नहीं समझते कि जब किसी के पास दौलत है, सब किसी के पास दुनिया आ जाती है, तो ये भी इम्तिहान है। एक सहाबी रसूल थे, जब हजरत उमर का दौर था गालिबन, तो उनको उनके हालात पता चले कि बहुत ही उनके हालात ऐसे हैं कि यानी बहुत खराब हालात है। तो उन्होंने उनके लिए कुछ अशरफियां भेजी, अशरफियां पाके बहुत परेशान हो गए कि दुनिया हमारे पास आ गई है, और फौरन उसको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। उनको डर लगता था कि ये दुनिया है, इससे हमें आजमाया जा रहा है, कहीं ये ना हो कि हम इसमें फेल हो जाए। अल्लाह ताला दुनिया की नेमतें भी देता है तो देखना चाहता है आप उसमें से कितना अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, अब आप कितनी अल्लाह की फरमाबरदारी करते, आप कितने अल्लाह के आगे झुक जाते, आप कितना अल्लाह ताला की एहसान मंदी के जज्बात अपने अंदर रखते हुए और ज्यादा उसकी इबादत के अंदर अपना वक्त लगाते हैं, उसके दीन के लिए अपना वक्त लगाते हैं। अल्लाह ताला देख रहा होता है, और इसी का हिसाब होगा कियामत के दिन, जब कहा जाएगा क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी, जिसमें अगर तुमने बात समझ नहीं होती तो समझ लेते, इसी का हिसाब होगा ना। इतनी उम्र थी तुम्हारे पास, इतनी आसाइशें थी तुम्हारे पास, इतनी नेमतें थी, तुम्हें हर चीज दी। देखिए एक बंदा है जिसके पास बहुत नेमतें, उसका हिसाब मैंने आपको बताया अभी, 2 दीनार वाले का ज्यादा है कि कम है, उसका ज्यादा है उससे जो 1 दीनार वाला है। तो इसका मतलब नेमत जितनी ज्यादा, इम्तिहान उतना बड़ा, सवालात उतने ज्यादा, आखरत में एक एक चीज का बारे में पूछा जाएगा, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, कमाने का भी और खर्च करने का भी हिसाब है। तो इंसान उसमें भी डरता रहे, उसमें भी झुका रहे, उसमें भी इंसान ये अपने अंदर फिक्र रखे कि ये जो नेमते हैं मेरे पास, हाय मुझे इनका एक दिन हिसाब देना होगा। वो ऐसे नहीं कि इतराता फिरे, ऐसे नहीं कि तकबर करता रहे, हाँ मेरे रब हाजा मिन फजली रब्बी लिख के तख्ती बाहे लगा दे और कहे बस मेरे रब का फजल है, बस फजल है, लेकिन किस तरह से कि अल्लाह ताला आजमा के देख रहा है अब तुम कितने पानी में हो। और तो अल्लाह ताला ये दुनिया जो है ना उसको भी देता है जिससे राजी है, और उसको भी देता है जिससे राजी नहीं है, याद रखिए। तो ये इस चीज की अलामत ना समझे कि हाँ अल्लाह ताला तो मेरे से बड़ा खुश है ना, तो इसलिए ही मुझे ये सब कुछ दिया हुआ। और वो जिसको कुछ नहीं मिला हुआ या मुसीबतें आई, जरूर इसने कोई गुनाह ही किए होंगे जो इसके ऊपर मुसीबत ही आई भी। यानी हम तो जैसे गुनाहों से बड़े पाक साफ है अगर हमें हर चीज मिल रही है, तो नहीं, इंसान इसको भी इम्तिहान समझे, उसको भी इम्तिहान समझे। अब इनमें बड़ा इम्तिहान कौन सा है? हम तो हर वक्त यही कहते हैं ना, ये बड़ा इम्तिहान है जो कोई मुसीबत में है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, बेचारी के बड़ी इम्तिहान में पड़ गई। नहीं, सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि इंसान के ऊपर नेमतों की बारिश हो, ये ज्यादा बड़ा इम्तिहान है। क्यों? इसलिए कि जब नेमतें आती हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की स्लोप पे होता है, वो बहुत रिस्की स्लोप है। अगर इंसान अपनी ब्रेक्स छोड़ दे तो गड़े में गिर जाएगा, यानी गफलत के अंधेरों में चला जाएगा। बहुत जल्दी ये नेमतें इंसान को अल्लाह को भुला देती हैं। तो इसलिए इंसान इन नेमतों में होते हुए अल्लाह अकबर, बहुत कम चांस होता है कि कोई अपने आप को संभाल के रखे और झुका रहे। याद रखे हमारे पास ज्यादा नेमतें, हमारा हिसाब ज्यादा है। और वो जिसके ऊपर गम है, जिसके ऊपर मुसीबतें हैं, जिसके ऊपर फक्र फाका है, जिसके ऊपर परेशानियां हैं, जिसके ऊपर बीमारियां हैं, वो भी ये ना समझे मेरे रब ने तो मुझे रुसवाई कर दिया, क्या फायदा हुआ मुझे, मैंने तो इतनी बातें की, मैंने तो इतना ये किया, मैंने तो नमाजें भी पढ़ दी, मेरा क्या फायदा, मुझे तो जलील करके रख दिया। नहीं, वो भी ये सोचे मेरा इम्तिहान है, अल्लाह ताला अब देख रहा है कि इम्तिहान के दिनों में मैं क्या करती हूँ, क्योंकि खरा खोटा आम दिनों में नहीं पता चलता, इम्तिहान में ही पता चलता है। तो अल्लाह ताला किसी को प्रमोशन दे देता है, किसी को बड़ा बोनस मिल जाता है, किसी को फरवानी मिल जाती है, किसी की औलाद बड़ी अच्छी निकल आई, वो आप भूले नहीं समा रहा, हाँ जी हमने ही तरबियत बहुत अच्छी की, हमने ही मेहनत बहुत की, हमने ये किया। और ये जो कह भी देते ना रब्बी अकरमन, इसके अंदर भी ये बात है कि हाँ जी मुझे जो ऑनर मिला है ना, मेरे रब ने मुझे ये दिया है, तो ये बात है क्योंकि मैं इस काबिल था। अपने आप को यही समझने लगता है तो। और दूसरी तरफ हाँ, जो मैं कह रही थी कि बड़ा इम्तिहान इसलिए इनका है कि इनकी ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा चांस है कि वो गफलत में चले जाए, जबकि जो मुसीबत वाला इम्तिहान होता है ना, इंसान चारो नाचार जब मुसीबत में होता है तो बंदा क्या करता है, अल्लाह तौबा करने लग ही जाता है, रातों को भी उसको अल्लाह ही याद आता है। तो ये इम्तिहान आसान है, देखने में मुश्किल है लेकिन वैसे आसान है, क्योंकि इंसान कम ही होता है कि गफलत में जाए। लेकिन हाँ, ये इम्तिहान जब इंसान को नेमते मिल जाए, ये बड़ा सख्त इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। इसी वजह से इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है ना कि उन्होंने इतनी मारे सैली, इतनी मारे सैली जब उनको कैद खाने में डाला गया था कि अगर हाथी को भी मारा जाता उतना तो कहते हैं उसकी भी खाल उतर जाती, वो सैली कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन जब उनको रिहा कराया गया, दूसरे खलीफा का दौर आया और उन्होंने उनको अशर्फियां भेजी, तो देखी तो आंखों में आंसू आ गए, फरमाया या अल्लाह मैं इस आजमाइश के काबिल नहीं। यानी ये बड़ी आजमाइश होती है जो पैसा होता है। आप इसीलिए देख लें, दुनिया में पैसे वाले कम ही आपको अल्लाह अल्लाह करते नजर आएंगे, कम ही, बहुत कम, ज्यादा तो बिगड़े हुए होंगे, उनकी औलादें भी बिगड़ जाती हैं, वो खुद भी नशे में पड़ गए, ऐशो इशरत में पड़ गए, फजूल खर्चियों में पड़ गए, इसराफ वो कर रहे हैं, हदें फलांगने लगे, क्योंकि आप किस तरह शो ऑफ करें, फखर तकब्बुर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फायकूल रब्बी अहानन, वो कहता है मेरा रब ने तो मुझे जलील कर दिया। कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है कि इससे तुम्हें जलील कर दिया या उसको दे दिया तो उसको इसको डिजर्व करता था और उसके ऊपर बड़ी करम नवाजियां हो रही हैं दे के, हरगिज नहीं, ये तुम्हारा ख्याल गलत है। बल्ला तुकरिमून अल यतीम, बल्कि तुम यतीम को इज्जत नहीं देते। ये चीज नहीं है बेइज्जती वाली कि अल्लाह ताला तुम्हारा रिस्क तंग कर देता है, ये चीज है बेइज्जती वाली, ये चीज है जिल्लत वाली कि जब तुम यतीम को इज्जत नहीं देते। यहाँ पे ये नहीं कहा गया यतीम को खाना नहीं खिलाते, उसको स्पॉन्सर नहीं करते, उसको इज्जत देने की बात आई, क्योंकि यतीम इतना इनसिक्योर होता है, उसको लगता है कि मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ। यतीम वो बच्चा है जिसके पास उसका बाप का साया नहीं है, बलूगत के बाद यतीमी खत्म हो जाती है, तो जो अभी बालिग नहीं है उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरती होगी, उसको लगता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं, इज्जत उनकी जिनके माँ बाप है, जिनको उनके देखने वाले हैं, तो उसको इज्जत दो। और उसकी इज्जत देने का एक तरीका ये है कि उनको अपने घरों में रखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ईफ़ हदीस है लेकिन मफहूम बहुत अच्छा है, कि अमल के लिए बहुत अच्छी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों के घरों के अंदर बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम परवरिश पाता है और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और मुसलमानों के घरों में बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम परवरिश पाता है और उसके साथ बदसलूकी की जाती है। तो अपने बच्चों की तरह ही उनको रखा जाए जिस घर में कोई यतीम है। अब होता है कि एक ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते हैं, एक फैमिली के सरबराह जो है दुनिया से चला गया, अब वो यतीम बच्चे उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। वला तहादून अला तआमिल मिस्कीन, ये है बात जो जिल्लत वाली है कि तुम नहीं तरगीब देते मिस्कीन को खाना खिलाने की। मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब हम सूरह मुदस्सिर में भी पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी हमने देख चुके कि जब कसूर गिनवाए जाते हैं जहन्नमियों के, तो ये कहा जाता है कि ये तरगीब नहीं देते थे लोगों को खाना खिलाने की, खासतौर पर मिस्कीन का तो ख्याल ही नहीं करते, किसी की भूख का ख्याल करना, जो करेगा इस दुनिया में किसी को खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नतों के खाने खिलाएगा। तो ये दुनिया में ये शौक रखना चाहिए कि मैं खुद भी आगे बढ़ के करूं और मैं दूसरों को भी कह दूं, देखो फलां जगह पे कोई मिस्कीन है, दिन इनका गुजारा मुश्किल से होता है, इसके पास नौकरी नहीं है, इनके घर में फाके हैं या इनके घर में भूख है। मिस्कीन अव्वल तो वो होता है जिसके पास नौकरी तो है लेकिन इतना नहीं है कि उसके घर का खर्चा आसानी से चल सके, हैंड टू माउथ बस रहता है, उसको भी खाना खिलाने की तरगीब दी गई। फकीर तो वो है जिसके पास तो कोई जरिया आमदनी ही नहीं, तो मिस्कीन को भी खाना खिलाने की तरगीब दो, लोगों को भी कहो, ये ना करो कि हमें क्या जरूरत है कहने की, नहीं दूसरों को भी कहो, इस नेकी की तरफ बुलाओ कि आप भी खाना खिलाएं, आए आप भी इनकी मदद करें। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी जगह है, कहीं पे सैलाब है, कहीं पे जंग है, कहीं पे फाका है, कहत आया हुआ है, मिस्कीन है वो सब लोग, उनको खाना खिलाने का दूसरों को भी कहे, इसमें ना शर्माए। ताकुलूना तुरास अकलन लम्मा, और तुम खाते हो, ताकुलूना खाते हो, अतुरास विरासत को, मीरास को, अकलन खाना, लम्मा समेट समेट के, जमा कर करके, यानी अपने लिए सारी रख लेते हो कि हम मैं ही खा लूं, बटोर लेते हो, या मीरास नहीं दी जाती थी औरतों को, बच्चों को, यतीमों का भी हड़प कर लेते थे, कोई चाचा है किसी का तो वो खा लेता था, कोई बेवा हो गई औरत तो उसके जो ससुराल ने सारी उसकी उसके शौहर के विरासत उसको दी नहीं। इसी तरह बहनों का हक नहीं देना, बेटियों को उनकी विरासत में हक नहीं देना, तो ये है जिल्लत के काम। तुम इसको जिल्लत समझते हो कि जो है तुम्हारा रिस्क तंग हो गया, असल जिल्लत तो ये है। आपके इंसान इसको जिल्लत समझता है भला? वह तो हिब्बुन अलमाल हब्बन जम्मा, और ये है कि तुम्हारे अंदर माल की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, हुब्बन जम्मा जम्मा बहुत ज्यादा, यानी कि किसी चीज को भर देना, लबालब कोई चीज भर जाए ना उसको कहते हैं जम्मा। तो तुम्हारे अंदर माल की मोहब्बत इस कदर ज्यादा है, तुम माल की मोहब्बत में बहुत शदीद हो, और ये माल की मोहब्बत ही है ना इंसान के अंदर के जिसकी वजह से वो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के पर तरजीह दे देता है, क्योंकि उसके लगता है कि बस दुनिया में मुझे मिल जाए, यहाँ पे कहीं कमी ना हो। वो माल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और इसी वजह से वो यतीम का हक भी नहीं देता, मीरास में भी नहीं देता, और यतीम को कोई या मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता कि अगर मैं किसी को कहूंगा लोग कहेंगे तुम भी तो खिलाओ। तो अब माल इतना पसंद है उसको कि जरा सा माल जाता हुआ भी वो बर्दाश्त नहीं करता। तो बेशुमार माल होने के बावजूद उसकी इतनी मोहब्बत शदीद है माल के साथ, ये माल को समेट समेट के रखता है। ये भी बहुत सारी बुराइयों की जड़ हो जाती है जो माल की मोहब्बत है, क्योंकि इंसान हलाल हराम का ख्याल नहीं करता। फिर इंसान फिर हर रास्ते से माल जमा करने की कोशिश करता है, इंसान हकूक दबा लेता है लोगों के, ज्यादतियां कर देता है लोगों के ऊपर, क्योंकि माल की मोहब्बत अंदर इतनी भरी हुई है। कल्ला हरगिज नहीं, यानी तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा ये बात कि इदा दुक्का तिल अर्दु दक्कन दक्का, कि जब कूट दी जाएगी जमीन रेजा रेजा करके। ये जो माल की मोहब्बत और तुम्हारे अंदर मीरास को दूसरों की खा लेते हो, तुम किसी को तरगीब नहीं देते कि खाना खिलाए, तुम यतीमों को तकरीम नहीं देते, उनको इज्जत नहीं देते, तो हरगिज नहीं। हरगिज नहीं मतलब क्या, कि जो तुम्हारी ये काम है ना ये दुरुस्त नहीं है, ये तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये सही नहीं था। तुम जिस जिन चीजों के पीछे, जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे थे वो सही नहीं था। कल्ला कह के उस पिछली बातों को नगेट किया जाता है, जब कल्ला का लफ्ज आता है तो इसका मतलब है कि जो पीछे पीछे बात है ना वैसे नहीं है ऐसे तुम समझ रहे हो। इन चीजों की मोहब्बत और इसके अंदर ही रहना, इसी को इंसान अपनी जिंदगी के एम्स बना लेता है। जब जमीन को कूटा जाएगा ना फिर तुम्हें समझ आएगी, फ्लैट कर दिया जाएगा, दक्कन दक्का मतलब रेजा रेजा कर दिया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा, और ये कब होगा? कयामत के दिन। इसलिए कि इसी जमीन के ऊपर हशर का मैदान बनेगा, तब तुम्हें समझ आएगी कि जिन चीजों से तुमने मोहब्बत की उनकी वैल्यू क्या थी, जिनके लिए तुमने मेहनतें की वो क्या मकाम रखती थी, जिसको तुमने बड़ा समझा वो कितनी अहम थी, जिन चीजों को तुमने बेकार समझा, बैक बर्नर पर डाले रखा, वो नेकियां कितनी कारामत थी। तो जमीन को कूट कूट के हमवार कर दिया जाएगा, और वजह और रब्बू का वल मलक सफन सफा, और तेरा रब और फरिश्ते सफ दर सफ उतर आएंगे, आ जाएंगे। जया आया यहाँ पे देखे, क्योंकि रब की बात है, अल्लाह ताला कैसे आएगा हम नहीं जानते, ये जैसे उसकी शान के लायक है, इसलिए हमें ना इसकी तावील करनी है। बाज गुमराह फिरकों ने इसकी तावील की, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अल्लाह ताला नहीं मुराद, अल्लाह ताला नहीं बल्कि उसका अमर आ जाएगा, उसका हुक्म आ जाएगा, क्योंकि हम तो नहीं ये कह सकते कि अल्लाह ताला खुद आ जाएगा, तो हमने तो नहीं ये कहना, इसमें तो तौहीन है। ऐसी बात नहीं, जो कुरान में जैसे कहा गया हम वैसे ही मानते हैं, हम ये नहीं जानते कि किस तरह अल्लाह ताला आएगा, वो कैफियत हमें नहीं मालूम, और इसके ऊपर हमें ज्यादा ड्वेल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी अमली जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला कैसे आएगा इसका हमारे से ना कब्र में सवाल है और ना आखरत में। अगर ये इतना अहम सवाल होता तो सहाबा कराम जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते। लिहाजा इन चीजों को ऐसे ही रहने देना चाहिए, बस ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उस दिन आएगा और उसके अर्श को 8 फरिश्ते उठाए होंगे और अल्लाह ताला मैदाने माशर में लोगों के हिसाब किताब के लिए खुद वहां पर आ जाएगा और उस वक्त फरिश्तों की सफें होंगी और चारों तरफ से मखलूक को फरिश्तों ने घेर लिया होगा। और देखिए फरिश्ते भी सफ बनाते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं ये बात, सफों में होते हैं, हैज़र्ड नहीं खड़े होते। उस दिन भी उनकी सफें होंगी, हालांकि कयामत का दिन है, कितनी हौलनाकी का दिन है, हशर का मैदान है, वो फिर भी सफों में खड़े में। वजी अयोम इदिम बी जहन्नम, और जहन्नम को भी उस दिन लाया जाएगा। वो कैसी कैसे लाई जाएगी, कैसे कैफियत होगी, हमें नहीं मालूम। हमें बस इतना पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम को 70,000 जंजीरों में बांध के लाया जाएगा, 70,000 जंजीरों में, और हर जंजीर के ऊपर 70,000 फरिश्ते होंगे जिन्होंने उसको पकड़ा होगा, और वो आपे से बाहर हो रही होगी और वो उसको लेकर आ रहे होंगे, लगामे होंगी, जंजीरें कह लें लगामे कह रहे हैं, उसे घसीट के ला रहे होंगे। अल्लाह अकबर, यौम इदिन यतदक्करुल इंसान, उस दिन इंसान को याद आएगा, उस दिन इंसान नसीहत पाएगा। वो नसीहत जो उसको कहा गया ना कि नसीहत ले लो नसीहत ले लो, वो नसीहत नहीं लेता था ना दुनिया में, अब ये इसको अच्छी तरह याद आ जाएगा। उस वक्त कहते थे याद करो ऐसा हो जाएगा, याद करो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो दुनिया में इतना महव था, उसको याद करने का टाइम ही नहीं था, वो याद करना ही नहीं चाहता था, वो नहीं समझता था कि याद दहानी मेरे लिए है, जाओ जाओ अपना काम करो, हमें सब पता है। लेकिन अब उसको सब चीजें याद होंगी, अब उसको सब समझ आ जाएगी, वो अन्ना लहू जिक्रा, अब नसीहत पाने का क्या फायदा, अब नसीहत लेना बेकार है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया कि वो कहते ना कि अब क्या फायदा, जिस वक्त चिड़ियां चुग गई थी और क्राइंग ऑन स्पिल्ड मिल्क वाली बात है कि इंसान को उस वक्त याद दिहानी का कोई फायदा नहीं होगा। याद दिहानी तो आज के लिए है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वक्त ऐसा होगा कि अगर कोई बंदा अपने पैदा होने से लेकर मरते दम तक भी सजदे में पड़ा रहा हो और अल्लाह की पूरी फरमा बरदारी उसने की हो, यानी कोई उसने टाइम नहीं जाया किया, वो हर वक्त बस आखरत की तैयारी में लगा रहा, उसने अपने आप को हमेशा अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में लगाए रखा, फिर भी अपनी इस इबादत को वो कयामत के दिन हकीर समझेगा, नाचीज समझेगा, और वो कहेगा कि काश मैं दुनिया में चला जाऊं और मैं अजर व सवाब के और ज्यादा काम करूं। तो सोचें वो लोग जो अपने कई दिन कई लम्हात जाया कर रहे हैं और उनको कोई होश नहीं है और उनको इस वक्त की कोई कदर नहीं है, वो उस दिन जाके सोचेंगे काश हम चले जाएं, हम और ही काम कर लें, आज तो हम आराम से बैठे ना, हम इतना तो कर रहे हैं और क्या चाहिए, हमने कौन सा नहीं किया वा, थोड़े चीदा चीदा दो चार काम हमने अपने जहन में बिठाए हैं, ये काम तो हम कर रहे हैं, हमने नमाजें पढ़ ली, हमने हज कर लिया है, हम मस्जिद चले जाते वहां पे सदका के बॉक्स में सदका डाल देते, अब बस हम बड़े दीनदार हो गए। आज इंसान बेफिक्र है, आज इंसान तकिया किए हुए बस खुशफहमियों के अंदर है, इन्हीं दो चार नेकियों को अपने समझता है काफी और अपनी बस ड्रीम वर्ल्ड में है कि बस मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे तो सब चीज अच्छी है, और सोचता नहीं है कि कितना बड़ा वो दिन है, उसके लिए थोड़ा अमल नहीं, बहुत सारी आसान अमल चाहिए, आसान अमल चाहिए, जिंदगी का एक एक लम्हा उसके लिए लगा दिया जाए, ताकि वहां पे ये ना हो कि हाय काश कि मैं इसके लिए और तैयारी कर लेती। एक आदमी चलता चलता ना कुएं के करीब पहुंच जाए ना, तो हर आदमी जानता है कि इस वक्त सबसे बड़ा काम यह है कि उसको कुएं के खतरे से आगाह किया जाए, ऐसा ही है ना? तो हर आदमी उस वक्त भूल जाता है कि कवायद क्या है, नव क्या है, सर्फ क्या है, क्या मैंने किस तरह से क्या ना, कहता है कुआं कुआं कुआं, है गिनने लगा, ऐसे करता है। लेकिन सोचे, सारी इंसानियत इस वक्त एक खतरनाक दिन की तरफ बढ़ रही है, मगर हर आदमी और कामों में लगा हुआ है, बहुत मसरूफ है, किसी के पास फुर्सत नहीं कहने की कुआं कुआं गिरने लगे हैं, कुआं हाय कुआं। हत्ता कि अगर कोई दीवाना इस किस्म की पुकार बुलंद करे भी ना, तो लोग तवज्जो नहीं देते, और कहते हैं कि ऐसे ही छोड़ो इसकी बातों को, तो ये तो दीवाना है। लोग किनारे पे खड़े हैं और समझते हैं महफूज मकाम में है, लोग मौत की तरफ बढ़ रहे हैं मगर खुश हैं कि जिंदगी का सफर बड़ा मजे का गुजर रहा है। हमने कई हकूक अदा नहीं किए हुए, हम लेन देन में खरे नहीं हैं, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारी जुबानें गइबतें करती हैं, हम लान तान करते हैं, फिर भी इसके बावजूद हम समझते हैं कि हम जन्नत के बस हकदार हैं और हमारे लिए रिजर्व्ड है, क्योंकि हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम रोजा रख लेते हैं, हम एक क्लास ले लेते हैं। अल्लाह हू अकबर। हमने हर एक ने अपनी एक खुद ही अपने आप को तसल्ली के लिए एक बस जहन में कुछ ख्यालात बनाए में और अपने आप को तसलियां देते रहते हैं उनके साथ। हजरत उमर के बारे में सोचे, जब उनको अबू लूलू ने जख्मी किया था और आपका आखिरी वक्त आया था, तो आपका बेटा आपका सर अपनी रान पे रखे हुए थे। हजरत उमर ने फरमाया है, ए अब्दुल्ला मेरा रुखसार जमीन पे रख दो। तो आपके बेटे ने ऐसा किया, तो इसके बाद अपना रुखसार जमीन पे रख के कहने लगे, ए उमर तेरी खराबी हो, तेरी माँ की खराबी, अगर खुदा ने तुझे माफ ना किया तो तेरा क्या बनेगा। सोचे, ये हजरत उमर है। तो इंसान उस दिन याद करेगा इन बातों को, इन क्लासों को, इस सबक को जो उसने पढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद अपनी जिंदगी पे कोई तवज्जो नहीं थी। ये सब याद आएंगे, सब मौके, सब बातें, एक एक बात याद रहेगी उस वक्त। कोई नहीं कहेगा मेरा हाफ़ज़ा कमजोर है मुझे नहीं याद, फिर कहेगा या कूलू या लैतनी कद्दमतु लहयाती, फिर कहेगा काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ बेचा होता, लिया हयाती। वो कहता है इस जिंदगी के लिए, जहां पे वो खड़ा हुआ है उसको कह रहा है जिंदगी, क्योंकि दुनिया की जिंदगी अब उसको कैसे लग रही है, वो तो गुजरगा थी, वो तो चंद लम्हे थे, वो कोई जिंदगी थी भला? असल जिंदगी तो ये, काश मैंने इसके लिए कुछ भेजा होता। आज इतनी फिक्र है कि उसके लिए भेजना है, वो है असल जिंदगी, आज ये जिंदगी लगती है। फयौमा ये दिन, तो उस दिन ला युआतिबू, नहीं अजाब देगा, अजाबहु आद, अजाब उसका आहद कोई एक, उसके जैसा अजाब कोई और नहीं दे सकता, जैसा अल्लाह ताला अजाब देगा। अभी आपने पढ़ा सूरह गाशिया में कि अल्लाह के अजाब कितने सख्त हैं, इन्ना बतशा रब्बी का ला शदीद, अल्लाह ताला जब पकड़ता है ना उसकी पकड़ बहुत सख्त है। वला यूजी को वसा का हुआ, और ना बांधे का बांधना कोई उसके जैसा कोई एक, यानी जिस तरह इनको बांधा जाएगा कैद खानों के अंदर, जैसे इनके साथ इनको जो वहां पे चेन किया जाएगा, जो इनको तौक पहनाए जाएंगे, वैसे कोई नहीं कर सकता। यानी जो आपने बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो सिर्फ अभी आपकी जहन में जितना भी वर्स टॉर्चर आ सकता है दुनिया में, किसी भी टॉर्चर सेल का उसको इमेजिन करें और सोचें, वैसा नहीं उससे भी ज्यादा, यानी उस जैसा अल्लाह तआला का अज़ाब है ना, वैसा हो ही नहीं सकता। यानी तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी सोचें, तुम्हारी बातें उनसे भी बियॉन्ड, और ऐसा उसका पकड़ना है, इसका बांधना ऐसा है कि कोई भाग नहीं सकेगा, फिर जबाने बंद हो जाएंगी, कोई बोल नहीं सकेगा। उस दिन को याद करो कि वो अल्लाह ताला की कैद कैसी होगी, उसकी जेल कैसी होगी, उसके टॉर्चर सेल कैसा होगा। फिर या अय्युहा तुहन नफ्सुल मुतमईना, फिर ए नफ्से मुतमईन, ए इत्मीनान वाले नफ्स। वो कौन सा इत्मीनान वाला नफ्स जो मुतमईन रहा अल्लाह ताला से इस दुनिया में, जो अल्लाह ताला से राजी रहा इस दुनिया में, अल्लाह के फैसलों पे, उसके हुक्मों पे। उसने ये नहीं कहा वाय क्यों, ये क्यों, उसने सवाल नहीं किया, क्वेश्चन नहीं करता था वो अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के फैसलों को। मेरे साथ ही ऐसा क्यों उसने किया, अल्लाह की शरीयत को क्वेश्चन नहीं करता था, और जो हालात उसके ऊपर आए उनको भी नहीं क्वेश्चन करता था। मुतमईन था, मेरे रब ने जो मेरे लिए फैसला कर दिया, मेरे रब का हर हुक्म सारा आंखों पे, मेरे रब की शरीयत सारा आंखों पे, उसके कवानीन सारा आंखों पे, मैं मुतमईन हूं। उसको उस दिन फरिश्ते जब उसकी मौत आएगी कहेंगे या तू हन्नफसुल मुतमईना, फरिश्ते इस तरह उसको पुकारेंगे, तू मुतमईन रहा ना। किससे मुतमईन रहा? अल्लाह ताला से, उसके हर फैसले, हर हुक्म, हर कानून, हर बात से। इरजिई इला रब्बी, चल अपने रब की तरफ, क्योंकि नफ्से मुतमईन है तो नफ्स है, तो उसको कहा जा रहा है इरजिई, चल वापस लौट, इला रब्बी के, अपने रब की तरफ, वहीं से आया था ना, तो अब लौट चल वहीं। रौदियतन राजी, यानी तू राजी होने वाला है, मर्दिया मफ़ऊल है, तुझसे राजी हुआ गया, तुझसे राजी अल्लाह ताला है। जो राजी है वो कौन है? बंदा। और मर्दिया, बंदा राजी रहा अल्लाह ताला से, और मर्दिया यानी अल्लाह उससे राजी हो गया। तो वो पहले अल्लाह से राजी हुआ तो अल्लाह ताला उससे राजी हो गया। जब आप कहते हैं ना रदी तो बिल्लाही रब्बन, 3 दफा सुबह पढ़ते हैं ना, शाम को भी पढ़ना, रदी तो बिल्लाही रब्बन बिल इस्लामी, तो उसमें अल्लाह ताला के रब होने से राजी होना, पहले ये सिर्फ मुंह की बात नहीं है, पहले आप अल्लाह ताला से राजी हों कि वो मेरा रब है, उसका हर फैसला मुझे कबूल है। अब तो यहाँ पे इतने अल्लाह ताला के कवानीन के ऊपर मसले, और अल्लाह ताला ने ये शरीयत में क्यों कह दिया, और ऐसे क्यों हो गया, कितने इसके ऊपर हम गिले शिकवे करते। लेकिन जो इंसान सारी जिंदगी राजी रहा ना, तो मर्दिया वो हो गया फिर, इसलिए क्योंकि अब अल्लाह उससे राजी है। अब ये मफूल हो गया, पहले ये राजी हुआ था, अब अल्लाह इससे राजी हो गया। तो मर्दिया यानी खुशी या पसंदीदा हो गया ये, तो चल अपने रब की तरफ, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, बस दाखिल हो जा मेरे बंदों में, अरे मेरे बंदों में दाखिल हो जा, जो मेरे मुकर्रबीन बंदे हैं, जो सालेहीन बंदे हैं, जो अल्लाह ताला से राजी होने वाले थे, उन्हीं बंदों में तू शामिल हो जा। अल्लाह ताला उसको फरमाएगा नफ्से मुतमईन को, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। पहला तो उनको ये पैगाम मिल गया अपनी मौत के वक्त, और फिर जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे तब भी उनको यही पैगाम मिलेगा, ए, 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 नफ्से मुतमईन, चल मेरे बंदों की में शामिल हो जा। ये है इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन, कि वो इस चीज को याद रखे कि मैंने नफ्से मुतमईना बनना है। वो अल्लाह ताला के रास्ते में चलने में मुतमईन रहे कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जो दीन दिया है, ये जो सिराते मुस्तकीम अता किया है, इत्मीनान से इसके ऊपर चलता रहे, और इसको खुशी से कबूल करे, और इसके ऊपर चलने को ऑनर समझे, तब वो अल्लाह के बंदों में शामिल होगा, जो अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, जिन जो अनअमता अलैहिम हैं, जो अल्लाह के खास बंदे हैं, उनमें शामिल हो जाएगा। الله أكبر. الله تعالی ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالی سے راضی ہو جائیں، ایسی زندگی اللہ تعالی عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ وادخلي جنتي.